का था, रूप वही रूप नया।
गाथा पर अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है 2000 का नोट और इसके लेखक हैं महेश दुबे। पूनम भामरा ने सब्जी का थैला उठाकर कंधे पर टांग लिया और सब्जी बाजार से तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। आज ऑफिस में नैना से कई विषयों पर चर्चा हुई थी। नैना के किसी परिचित को 1,00,000 रुपए की लॉटरी लगी थी। पूनम ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, न जाने कौन लोग होते हैं जिन्हें लॉटरी लगती है। यहां तो सारा जीवन बीत गया लेकिन कभी एक चवन्नी भी न मिली। काश कभी मुझे भी सड़क पर पड़ा नोटों का बंडल मिल जाए या कभी घर में गड़ा खजाना हीरे जवाहरात मिल जाएं, तो कितना मजा हो। इस तरह के दिवा स्वप्न तो बहुत लोग देखा करते हैं लेकिन असलियत तो अलग ही होती है और पूनम इसका अपवाद नहीं थी। ऑफिस के बाद 1.5 घंटे की लोकल ट्रेन की यात्रा उसे बुरी तरह थका देती थी। बेलापुर से जोगेश्वरी तक का सफर काफी यातनादायक होता था। उसके बाद सौदा सुलभ खरीदते घर पहुंचने तक काफी अंधेरा घिराता था जो मोहन की आंखों में भी उतरा नजर आता था। मोहन पहले उसका प्रेमी था फिर पति बन गया था। पहले मोहन ऐसा शक्के मिजाज नहीं था लेकिन जब से किसी अनजानी बीमारी ने मोहन का उठना बैठना मुश्किल कर रखा है तब से उसके दिमाग पर कई शंकाएं सांप की तरह कुंडली मारे बैठी रहती हैं और गाहे बगाहे शब्द बाण से डसती भी हैं। शायद मन ही मन मोहन अपनी बदकिस्मती और बीमारी के लिए पूनम को ही जिम्मेदार मानता हो। इतनी देर कैसे हुई, केसीआर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी जैसा सवाल तो रोज ही उठता था। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। पूनम की आंखें सजल हो गईं। घर और बाहर दोनों संभालो, अपाहिज पति की सेवा करो और ऊपर से पति द्वारा लगाए गए लांछन भी सहो। छी। पूनम उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी। उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मोहन भामरा से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके मायके वालों ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए थे। कुलच्छिनी, तुझे मुंबई कामकाज के लिए भेजा था कि ये चरित्र दिखाने, जा आज से हमारा तेरा कोई संबंध नहीं। पिता की क्रोध से थरथराती आवाज आज भी पूनम के कानों में गूंज रही थी। अब पति के नाकारा हो जाने की बात लेकर किस मुंह से मायके जाए, बेचारी किसी तरह से मैनेज कर रही थी। बहराम बाग के व्यस्त चौराहे से पूनम दाहिनी ओर की पतली सी गली में मुड़ गई जिसके अंतिम मुहाने पर उसका 2 कमरों का छोटा सा घर था। मोहन के नपुंसक क्रोध की बरसात से भीगने की मानसिक तैयारी करती पूनम जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि एकदम से ठिठक गई। उसके सामने से एक लाल कागज उड़ता हुआ थोड़ी दूरी पर जा गिरा जिसे देखकर पूनम चौंक गई। उसे लगा जैसे ये कागज 2,000 रुपए का नोट है। पूनम ने भारी थैला जमीन पर रखा और दौड़ती हुई नोट तक पहुंचने का प्रयास करने लगी। हल्की हवा के वेग से नोट स्थिर नहीं हो रहा था। वो फड़फड़ाता हुआ पूरी शक्ति से पूनम के चंगुल से निकलने की कोशिश में दौड़ा चला जा रहा था। पूनम दौड़ते हुए हांफने लगी लेकिन उसने पक्के तौर पर देख लिया था कि यह 2,000 का ही नोट था। गनीमत है कि गली सुनसान पड़ी थी। पूनम अपने भारी शरीर के साथ दौड़ती हुई पसीने से भीग गई लेकिन नोट का लालच उसे दौड़ाए जा रहा था। अंततः गत्वा पूनम के हाथ में वो नोट आ ही गया। एक बार दौड़ते समय पूनम ने सोचा कि कहीं ये नोट बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए नोट जैसा नकली हुआ तो उसका पोपट हो जाएगा। लेकिन नोट को छूते ही उसकी समझ में आ गया कि ये 100% खरा असली 2,000 का नोट था। लेकिन फिर ये देखकर उसका चेहरा निराशा से झुक गया कि ये नोट उसके किसी काम का नहीं था। पूनम को ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि वो नोट आधा फटा हुआ निकला, जैसे किसी ने झटके से उसे 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। क्योंकि वो नोट काटा नहीं बल्कि फाड़ा गया था इसलिए उसका फटा हुआ हिस्सा असमतल और रेशेदार था। आम धारणा के विपरीत नोट कागज से नहीं बल्कि कपास से बनते हैं। कपास के छोटे छोटे रेशे उस नोट के फटे हुए भाग से झांक रहे थे। निराशा से पूनम का चेहरा झुक गया। ये आधा नोट भला किस काम का? लेकिन फिर भी नोट तो था ही, भले अधूरा हो। उसने चुपचाप नोट को मुट्ठी में जकड़ लिया और वापस लौटकर अपना सब्जी का थैला उठाकर चल पड़ी। आ गई महारानी। घर पहुंचते ही मोहन की बड़बड़ शुरू हो गई, लेकिन चूंकि ये रोज की बात थी इसलिए पूनम ने इस पर कान नहीं दिया। मोहन शादी के कई सालों तक बेहद अच्छे स्वभाव का रहा, पर दोनों की संतान न हुई और मोहन किसी अजीब बीमारी का शिकार होकर चलने फिरने की ताकत खो बैठा। बीमारी की वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई और घर का पूरा बोझ पूनम पर आ गया। इन्हीं कारणों से मोहन चिड़चिड़ा हो गया था। पूनम के घर पहुंचते ही उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पूनम ने इस पर कोई ध्यान न देते हुए नजदीक जाकर अपनी मुट्ठी खोली और बोली, ये देखो मुझे क्या मिला, 2000 का नोट, लेकिन फटा हुआ। मोहन ने हाथ बढ़ाकर नोट उठा लिया और ध्यान से देखने लगा। नोट को ध्यान से देखकर मोहन की आंखें चमकने लगी। अरे वाह, हठात मोहन के मुंह से निकला। पूनम समझ नहीं पाई कि 2000 के इस आधे फटे नोट में ऐसा क्या है जिसे देखकर मोहन के चेहरे पर छाई रहने वाली मुर्दनी दूर हो गई है। पूनम, ये नोट नहीं खजाने की चाबी है, मोहन बोला। अरे ऐसा क्या है इसमें, फटा हुआ नोट ही तो है, आधे फटे नोट की भला क्या औकात, पूनम आश्चर्यचकित हो गई। मोहन पहले सट्टे के अड्डे पर हिसाब किताब लिखा करता था और उसका कई तरह के लोगों से पाला पड़ता था जो जुर्म की काली दुनिया के बाशिंदे थे। उसने पूनम को पास बुलाया और बोला, इस आधे नोट को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? जो आम नोट में होता है वैसा ही तो है, इसमें क्या खास है? अरे मूरख, वाटरमार्क की जगह पर कुछ लिखा है ना, अरे उसे पढ़ो, मोहन आदतानुसार झुंझला पड़ा। हाँ, लिखा है 23MI3, पूनम घबरा कर बोली, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? सुनो, ये नोट मामूली नहीं है, इस तरह के नोट स्मगलर्स उपयोग में लाते हैं, मोहन बोला। स्मगलर्स का माल लाने वाले और रिसीव करने वाले एक दूसरे को नहीं पहचानते, दोनों पार्टी के पास नोट का आधा आधा हिस्सा रहता है। नियत समय पर दोनों पार्टी कहीं मिलकर नोट को जोड़कर देखते हैं, फिर माल का आदान प्रदान करके रवाना हो जाते हैं। ओह, मगर इस पर ये लिखा क्या है, पूनम बोली। अब उसकी उत्सुकता भी जाग गई थी। ये कोड वर्ड में जगह का नाम होगा जहां दोनों पार्टी को मिलना होगा। मैं कुछ करता हूं पूनम, लगता है हमारे दिन बदलने वाले हैं, मोहन बोला। नोट देखने के बाद मोहन के स्वर में जो मिठास आ गई, पूनम उसमें ही खुश थी। तुम्हारे लिए क्या बना दूं मोहन, उसने पूछा। मोहन हंसता हुआ बोला, आज तो तू विस्की का पैक बना दे पूनम, आज तूने दिल खुश कर दिया। पूनम ने आंखें चढ़ा ली क्योंकि वो मोहन का पीना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मोहन को खुश देखकर उसके मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। काश ये हमेशा ऐसे ही हंसते बोलते रहते तो कितना अच्छा रहता, मैं सारी मुसीबतें हंसते हंसते झेल जाती। इतना सोचकर वो फ्रिज से बोतल निकालने चल पड़ी। किचन में एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर दीवार में ठुका हुआ था जिसमें गणपति भगवान की छोटी सी मूर्ति विराजमान थी। पूनम उस मंदिर के आगे ठिठकी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे घर पर खुशियों का साया बरकरार रखना। लेकिन वो नहीं जानती थी कि गणपति बप्पा की इच्छा कुछ और ही थी। अगली दोपहर मोहन मार्था आंटी के अड्डे पर अपने पुराने दोस्त गैब्रियल के साथ बैठा देशी शराब की चुस्की ले रहा था। मार्था का अड्डा उन सभी लोगों के लिए एक सामुदायिक केंद्र का दर्जा रखता था जो अनेक तरह के गैर कानूनी या अनैतिक धंधों में अपना दखल रखते थे। मार्था एक अति विशाल शरीर वाली गोवन विधवा थी जो अपने पति जॉन डिसूजा के निधन के बाद उसका देशी शराब का अड्डा चलाती थी। मार्था हमेशा अपनी मैक्सी के अंदर एक तेज धार की नेपाली खुखरी छुपाए रखती थी जिसका स्वाद कई गुंडे मवाली चख चुके थे। वैसे 2-3 झोल झाल शराबियों को तो वो अपने विशाल पंजों में ही मुर्गाबी की तरह दबोच लिया करती थी और उससे जल्दी कोई पंगा नहीं लेता था। मोहन अपने परिचित श्याम राव के ऑटो रिक्शे में बैठकर किसी तरह यहां तक पहुंचा था। गैब्रियल के साथ मोहन की अच्छी जुगलबंदी थी। दोनों किसी जमाने में रात दिन के साथ ही हुआ करते थे और हर स्याह सफेद में पार्टनर्स थे। लेकिन बाद में पहले मोहन ने शादी करके स्ट्रेट जिंदगी बिताने की ठानी और बाद में उसकी टांगे बेकार हो गईं, तो इन दोनों का हमेशा का साथ उठना बैठना लगभग खत्म सा हो गया था। लेकिन आज मोहन ने विशेष काम का हवाला देकर गैब्रियल को मार्था के अड्डे पर बुलाया तो पुरानी दोस्ती के मद्देनजर गैब्रियल इनकार ना कर सका। ऑटो ड्राइवर श्याम राव मोहन को यहाँ छोड़कर अपने धंधे पर निकल गया, क्योंकि मोहन ने ही ये आइडिया सरकाया था कि वहाँ इंतजार में उबासियाँ लेने से अच्छा था कि श्याम राव कुछ अतिरिक्त कमाई ही कर लेता। इस बहाने मोहन को भी गैब्रियल के साथ बातचीत में पूरा एकांत मिल जाता। दोनों ने ये तय किया था कि जब मोहन का काम खत्म हो जाता तो वो मोबाइल फोन पर कॉल करके श्याम राव को बुलवा लेता। इसीलिए श्याम राव लंबी दूरी के पैसेंजर्स नहीं ले रहा था। वो पिछले 1 घंटे से इसी एरिया में मनराता फिर रहा था कि न जाने कब मोहन की कॉल आ जाए। वैसे श्याम राव भी बड़ी कुत्ती चीज था। उसे जब सुबह मोहन ने मार्था के अड्डे पर जाने और लौटने का भाड़ा ऑफर किया तो श्याम राव का माथा ठनका था। बड़ू ये लंगड़ा बिना काम तो इतना दूर जाने से रहा। वैसे भी मार्था का अड्डा जरायम पेश लोगों का मिलन स्थान है, ये बात श्याम राव अच्छी तरह जानता था। अगर मोहन कोई खिचड़ी पकाने की जुगत में है तो उसमें अपना भी चम्मच मार कर रहेगा।
ए गणपति बप्पा, एक दंत, क्या आप जिंदगी भर ऑटो ही चलाएगा क्या? थोड़ी कृपा इधर भी कर देना प्रभु।
वो बुदबुदाता हुआ फिर मार्था के अड्डे के सामने से ऑटो लेकर निकला। वहां वातावरण सामान्य ही था, लेकिन अब श्याम राव ने तय कर लिया था कि अब वो पैसेंजर रिफ्यूज करेगा और मोहन का राज जानने की कोशिश करेगा। उसने अपना ऑटो एक ट्रक के पीछे पार्क कर दिया और गिद्ध दृष्टि से मार्था के अड्डे के प्रवेश द्वार पर देखता रहा और कोई जुगत सोचने लगा। भीतर मोहन ने अपनी जेब से एक 2000 का आधा नोट गैब्रियल के हाथों में पकड़ा दिया, जिसे वो दिलचस्पी से देख रहा था। गैब्रियल काफी अरसे पहले सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के यहां कैरियर का काम किया करता था। उसकी आंखें नोट को देखते ही संकुचित सी हो गईं। उसने नोट को देखते ही बता दिया कि यह कैरियर को मिलने वाले नोट का हिस्सा है। कैरियर उस बंदे को कहते हैं जो बड़े लोगों के स्मगलिंग के माल, नशीले पदार्थों की पुड़िया को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। उसकी उंगलियां नोट को छूने के रोमांच के कारण थरथराने लगी। वो बोला, इस पर जो लिखा है वो माल लेना का तारीख है और पीछे 3 का मतलब है रात 3 बजे माल का डिलीवरी होगा और बीच में शॉर्ट फॉर्म में MI लिखा है, वो मेरे को लगता है किसी जगह का शॉर्ट फॉर्म है।
यार 23 तारीख तो परसों ही है, क्या यही तारीख हो सकती है क्या?
मोहन फुसफुसाता हुआ बोला,
बिल्कुल 100% यही तारीख है। ऐसे नोट काम होने के 1-2 दिन पहला ही बांटा जाता है। परसों इसी नोट के टुकड़े से डील होएंगी,
गैब्रियल बोला।
ओह, तो अब तो ये नोट हमारे पास है। अगर नियत समय पर कोई आदमी नोट लेकर नहीं पहुंचा तो क्या होगा?
मोहन ने पूछा।
ओ, सामने वाला पार्टी किसी कीमत पर बिना नोट का माल तो नहीं देंगी, और इस धंधे का ये कानून है, वो माल लेकर लौट जाएगा और क्या, गैब्रियल बोला।
गैब्रियल और मोहन सिर जोड़े बातचीत में मशगूल थे। उन्हें ये भान नहीं था कि श्याम राव न जाने कब से आकर उनके बगल में खड़ा है और उनकी बातें सुन रहा है। उसकी बाज सी नजर गैब्रियल के हाथ में पकड़े हुए 2000 के नोट के आधे टुकड़े पर थी। गैब्रियल की नजर जैसे ही श्याम राव पर पड़ी वो हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से नोट को मुट्ठी में दबाने की कोशिश की।
इधर ही भाड़ा लेकर आया था तो सोचा अगर बात खत्म हो गई बाऊ तो काय को इधर खड़ा रहने का, मैं तेरे को लेता चले,
कहकर श्याम राव ने यह जताने की कोशिश की कि उसे सवारी के अलावा किसी दूसरी बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भीतर से वो भी उद्वेलित हो उठा था।
उसे ये राज पता चल चुका था कि मोहन और गैब्रियल किस बाबत मिले थे और आगे क्या खिचड़ी पक सकती थी। अब उसकी दिलचस्पी मोहन में खत्म हो गई थी, इसीलिए जैसे ही मोहन ने उसे थोड़ी देर बाद आने को कहा, वो लपक कर बाहर निकल आया और जल्दी जल्दी कहीं फोन लगाने लगा। रफीक शेख उर्फ लंबू ने जलती हुई आंखों से सामने खड़े रहमान अंसारी को देखा। शरीर से भारी भरकम रहमान सींक जैसे दुबले पतले रफीक की आग उगलती नजरों का सामना न कर सका और उसने पलकें झुका ली। गांजा सेवन करने के कारण रफीक की आंखें लाल सुर्ख रहती थीं, जिसकी ताब कोई जल्दी नहीं ला पाता था। रफीक अपनी नाक खुजाने लगा। उसकी आदत थी कि टेंशन के समय वो अपनी नाक खुजाने लगता था। रफीक शेख उर्फ लंबू अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। आदतन अपराधी रफीक बचपन से ही अपराध की दुनिया में कूद गया था। छुटपन में ही माँ बाप की मौत के बाद अनाथ रफीक को उसके मामा मामी ने पाला था और उनके फर्ज निपटाऊ लालन पालन के मद्देनजर रफीक चौथी कक्षा तक ही स्कूल की सीढ़ियां चढ़ पाया था। बाद में वो गलत संगत का शिकार होकर अपराध की काली दुनिया में शामिल हो गया। बाद में कई कत्लों और जेल यात्राओं के बाद उसने बांद्रा से दहिसर तक के इलाके में अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। अपने द्वारा किए गए कत्लों की गिनती करना वो काफी समय पहले छोड़ चुका था। रहमान अंसारी भी अपराध की काली दुनिया का मंजा हुआ खिलाड़ी था और रफीक का आजमाया हुआ गुर्गा था। वो काफी समय से लंबू की खिदमत में था। आज के पहले उसे ऐसी कोताही नहीं हुई थी। कल पता नहीं कैसे उसके पास से 2000 के नोट का वो टुकड़ा गुम हो गया, जिसे दिखाकर मड आइलैंड के उजाड़ समुद्र तट पर सोने की चार पेटियां मिलती। लंबू का माल हर महीने दुबई से आता था। ये माल सोने के बिस्किटों के रूप में होता था, जिस पर कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना वो बाजार में उतार देता था और भारी मुनाफा कमाता था। लेकिन रहमान की गलती से इस काम में फच्चर पड़ गया था। परसों मड आइलैंड पर रात 3 बजे जो मोटर बोट माल लेकर आएगी, उसका कैप्टन या तो कोई विदेशी अंग्रेज होगा या फिर अरब, और वो बिना नोट के किसी को माल नहीं सौंपेंगे, ये तय था। अब अगर परसों तक खोए हुए नोट का आधा टुकड़ा ना मिला तो लंबू को करोड़ों की चपत लगती और रहमान को इस गलती के लिए मौत से कम सजा नहीं मिलती। क्या करे गजानन, अब इस मुसीबत का क्या करे, लंबू नाक खुजाना बंद करके बोला। गजानन वामन इनामदार, लंबू का दाहिना हाथ और हर स्याह सफेद में बराबर का पार्टनर था। दोनों स्कूली जमाने के दोस्त थे। पहली से चौथी कक्षा तक दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, बाद में साथ छूट गया था, लेकिन दोस्ती बरकरार थी। गजानन खूब बन संवर कर रहता था और उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि ये चार खून कर चुका है। लंबू तो बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़कर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था, लेकिन गजानन ने MBA की पढ़ाई की थी और सफेद कॉलर बनकर कुछ दिन नौकरी भी की थी। फिर गजानन की बहन का किसी से प्रेम संबंध हो गया और दुर्भाग्यवश बात इतनी बढ़ी कि गजानन के हाथों अपने होने वाले जीजा का खून हो गया। गजानन अपने बचपन के दोस्त और बड़े डॉन रफीक की शरण में पहुंचा था, जिसने गजानन की खूब मदद की थी और उसे कानून के कोप से बचा लिया था। बाद में गजानन भी अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। पैसे और पावर का आकर्षण आखिर किसे छोड़ता है। सुन लंबू, गजानन अपनी लड़कियों जैसे बाल झटकता हुआ बोला, इसे कल तक का टाइम देते हैं। कल तक या तो ये खोया हुआ नोट तलाश करे या फिर, गजानन ने ऐसे अंदाज में बोला मानो काला हिट छिड़क कर मच्छरों का सफाया करने की बात कर रहा हो। रहमान के बदन में भय की ठंडी लहर दौड़ गई। बॉस, मैंने पूरे अंडरवर्ल्ड में बात फैला दी है बॉस, जल्दी नोट का पता चल जाएगा। वैसे मैं कैसे भी करके कल तक नोट ढूंढ निकालेगा भाई, चाहे उसके लिए मुझे पाताल तक की काई को ना खोदना पड़े। वही ठीक होगा रहमान, वही ठीक होगा, हमारे लिए भी तेरे लिए भी, लंबू फिर नाक खुजाता हुआ बोला। इतने में रहमान का फोन बज उठा। उसने कान से लगाया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैं जल्दी खुशखबरी लेके आता है बॉस, अभी अपन को निकलना पड़ेगा, कहकर वो सलाम करके चला गया। लंबू और गजानन एक दूसरे को देखते ही रह गए। आखिर रहमान अंसारी के पास किसका फोन आया था? क्या वो नोट ढूंढ सका? मोहन और गैब्रियल ने मिलकर आखिर क्या चाल चली? जानने के लिए सुनिए 2000 का नोट का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।